ओम शांति। हम सभी को बाप दादा ने अभी पिछली जो मुरली चली उसमें ये प्रेरणा दी कि हमें सभी खजानों को सफल करके जमा का खाता बढ़ाना है। और बाबा कहते हैं संगम युग है ही जमा करने का युग। जैसे हम बैंक में जमा करते हैं तो बाबा ने कहा कि अविनाशी बैंक संगम युग पर ही खुलती है, और जिसमें हम एक जन्म के लिए जमा नहीं करते लेकिन 21 जन्मों के लिए, और 21 जन्म भी क्या पूरे कल्प का ही खाता हमारा अभी जमा हो रहा है। इसलिए संगम युग धर्माओं युग है, और हम बच्चे जो इस समय कमाई करते हैं उस कमाई का हिसाब भी अलग है। हर कदम जो बाबा की याद में उठाते हैं वो हर कदम में पद्मों की कमाई है, जमा कर सकते हैं पद्मों की कमाई। कदम में पद्म कहते हैं। बाबा के श्रीमत अनुसार या पद्म समान बनकर के अगर हमने कर्म किया, पद्म समान यानी कमल पुष्प समान स्थिति में अगर हमने कर्म किया तो हमारे पद्मों की कमाई जमा होती है। तो बाबा कहते हैं आप बच्चे बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, आप जैसा बिजनेसमैन कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दुनिया के कोई भी बिजनेसमैन ऐसे नहीं है जो इतनी कमाई एक दिन में कर सके। भले ही एक दिन में करोड़ कमा सकते हैं, कुछ करोड़ कमा सकते हैं, मानो हम टाटा बिरला अंबानी या बिल गेट्स जैसे अमीरों की बात करें तो हो सकता है वो एक दिन में करोड़ों कमाते होंगे, लेकिन एक कदम उठा करके पद्मों की कमाई हो जाए ऐसी कमाई तो कोई नहीं कर सकता। तो हमारी कमाई भले दिखाई नहीं देती है लेकिन वो बाबा की बैंक में जमा होती जाती है, और इसीलिए बाबा हमें रिचेस्ट इन द वर्ल्ड कहते हैं। कहा ना बाबा ने हाईएस्ट होलीएस्ट एंड रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। शुरू शुरू में बाबा ने जब ओम मंडली थी तब बाबा ने अखबार में भी निकाला था कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो देखने में भले साधारण आत्माएं हैं, अभी दुनिया की नजरों में हम नहीं कहेंगे कि हम इतने कोई पूंजी और धन वाले हैं, लेकिन सचमुच जो हमारी कमाई है वो अकुट है और अविनाशी है, विनाश भी होने वाली नहीं। वो कमाई तो फिर भी विनाश हो जाएगी। बैंकों में पड़ा होगा तो बैंक दिवालिया भी हो सकते हैं, जो बैंक में पड़ा है वो भी जरूरी नहीं है कि मिल जाएगा, लेकिन ये कमाई जो है वो कभी भी विनाश होने वाली नहीं है। और उसकी विधि बाबा ने बहुत सहज बताई कि जो खजाने बाबा ने हमें दिए हैं उन खजानों को हम जितना यूज करते हैं अपने प्रति चाहे दूसरों के प्रति उतना वो बढ़ता जाता है। भगवान ने दिया सबको एक जैसा है, एक ही के द्वारा मिला है, एक जैसा मिला है, एक ही समय पर मिला है, और ये भी अंतर नहीं रखता बाबा कि ये पहले ज्ञान में आए ये पीछे ज्ञान में आए, इसलिए इनको कम मिला इनको ज्यादा मिला नहीं। जिस खड़ी जन्म हुआ बाबा के पास अलौकिक जन्म हुआ उस खड़ी ही बाबा सारे खजाने हमारे हवाले कर देता है, क्योंकि उसके पास कमी नहीं है। अगर सारी दुनिया की आत्माएं भी लेना चाहें तो भी अखुट है। तो ये तो बाबा के बच्चे तो थोड़े हैं, कोटों में कोई में भी कोई आत्माएं हैं तो उनके लिए थोड़ी कमी है बाबा के पास, लेकिन फिर भी नंबर वार है। नंबर वार क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जो खजाने मिले उन्हें यूज करने में अंतर है। जैसे बाप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे करके जाता है तो कोई बच्चे जो होते हैं कुछ लाख की प्रॉपर्टी होगी उसको इतना इन्वेस्ट करेंगे कि उसे ही करोड़ों की संपत्ति बना लेते हैं। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो उसको बढ़ाना नहीं जानते, वो जो थोड़े बहुत लाख मिले उसको भी खा करके खत्म कर देते हैं। तो फिर हमने उसको कितना बढ़ाया उस पर निर्भर करता है। भाग्य सबको मिला है। तो जैसे ज्ञान का खजाना, हाँ, कौन कौन से खजाने मिले हैं, हाँ, ज्ञान का और शक्तियों का, गुणों का, और समय का खजाना, और संकल्पों का खजाना, और श्वास का खजाना। उस दिन तो बाबा ने कहा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों की बात की, लेकिन विशेष बाबा कहते हैं ये छह खजाने हम बच्चों के पास हैं। तो ज्ञान धन सबसे बड़ा धन माना गया। जो ज्ञान बाबा ने दिया वो बिल्कुल नया ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जो शास्त्रों में, वेदों शास्त्रों में है ही नहीं। है तो आटे में नमक के मिसल है, क्योंकि ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। और इसलिए बाबा कहता है, लोग कहते हैं भगवान के लिए कि भगवान की गतमत न्यारी है, यानी जब वो आकर ज्ञान देता है तो वो बिल्कुल ही न्यारा ज्ञान देता है, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तो उस ज्ञान का एक एक रतन लाखों रुपए का है, इसे बाबा से सुनते हैं हम। तो जो ज्ञान हम सुनते हैं, एक है सुनना और दूसरा है उसको समाना। जब हम उसको समाते हैं तभी यूज कर पाते हैं, नहीं तो ज्ञान सुनकर के खुशी जरूर होती है हमको, क्योंकि ज्ञान सुनना भी खुशी देता है, लेकिन अगर हम उसको साथ लेकर के नहीं गए, जिसको बाबा कहता है मनन करना, माना भोजन को हजम करना। खाना खाते हैं हम, अगर वो पचता है तभी वो हमारा खून बनता है, हमारे को शक्ति मिलती है। अगर खाना पचेगा नहीं तो शक्ति नहीं मिलेगी शरीर को। ऐसे ही जो ज्ञान सुना उसको अगर हमने रिवाइज नहीं किया, उसको हमने मनन नहीं किया, उसको अपना नहीं बनाया, जिसको कहेंगे वो अपना हो जाए, उसको घोटा नहीं, जिसको कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े, उसकी खुशी और नशा कब अनुभव होगा, जब उसको घोटेंगे। दुनिया के नशों के लिए भी कहते हैं कि जितना घोटे हुए नशे होते हैं उतना वो ज्यादा नशा चढ़ता है। तो ये भी ज्ञान का नशा भी वो नारायणी नशा चढ़ाता है, वो नशे तो उल्टे नशे हैं, लेकिन जो ज्ञान का नशा है वो हमें नारायणी नशा देता है। गाय के लिए कहते हैं वो जुगाली करती है, खाती है तो सिर्फ खा नहीं लेती है, लेकिन फिर उसको जुगाली करती है, यानी फिर से उसको बाहर लाती है। तो विचार सागर मंथन करना, उस पॉइंट पर क्यों बाबा ने ये बात कही, इसका क्या राज है, ये कैसे मुझे विजयी बना सकती है, कैसे मुझे माया जीत बना सकती है, इस पॉइंट को हम दूसरों की सेवा में कैसे यूज कर सकते हैं, इस पॉइंट से हम कैसे विघ्नों पर विजयी बन सकते हैं, यानी उस पर वो जो हमने मनन किया। लेकिन केवल सुन लिया तो कहाँ रह जाता है, वो क्लासरूम तक ही रह जाता है। क्लासरूम के बाहर गए थोड़ा समय उसका असर रहता है, जो ज्ञान सुना होता है एक दो घंटे उसकी बैटरी चार्ज रहती है हमारी। तो उस समय कोई भी हमको मिलता है, कोई ऐसी ऊपर नीचे बात हो गई तो भी हम प्यार से बोलेंगे, क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज है। लेकिन दो घंटे के बाद जैसे जैसे विस्मृति होती है, ज्ञान को अगर हमने मनन नहीं किया, विस्मृति में आ गए, तो हमारे पुराने संस्कार फिर से इमर्ज होने शुरू हो जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं हम। फिर कोई थोड़ी भी बात बोलेगा तो पहले जैसे चिढ़ जाएंगे, अशांत हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, फिर सोचेंगे कि योग भी किया था, अमृत वेला भी किया, मुरली भी सुनी, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों रहा है? क्योंकि हमने ज्ञान को स्मृति में नहीं रखा। जब तक स्मृति नहीं है तब तक समर्थी नहीं आ सकती। हम दादियों को देखते थे, दादियां खासकर दादी प्रकाश मणि जी को देखा कि चार बार मुरली पढ़ते थे वो दिन में। माना मुरली दिमाग से कभी भी बाहर जाएगी नहीं, जैसे ही दादी को समय मिलेगा दादी के हाथ में मुरली होगी। कुछ भाई बहने कहते हैं हमारा मनन चलता ही नहीं है ज्ञान का। चलो मनन नहीं चला सकते, कम से कम रिवाइज तो कर सकते हैं, और आजकल तो रिवाइज करने की बहुत सहज विधियां हमारे पास, मुरली हमारे हाथ में ही होती है, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, आपके पास व्हाट्सएप में मुरली होती है, ऐप में मुरली होती है, किसी भी तरह से मुरली आजकल बहुत आसानी से हमें मिल जाती है और जब चाहे हम तुरंत उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो जितना वो स्मृति में रहेगा उतनी हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। और कोई भी माया इस तरह का अगर पेपर लेती है हमारा, क्योंकि होना ही है वो तो, और हम कलयुगी दुनिया में रह रहे हैं तो ये बातें तो बहुत आम हैं, तो हम सहज ही उसको पास कर जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा कि बात कब आई और कब चली गई। नहीं तो छोटी छोटी बातें हमारे लिए विघन रूप बनती रहती हैं। तो ज्ञान को हम रत्नों की तरह यूज करें, ज्ञान हमारे अस्त्र शस्त्र भी हैं। बाबा कहता है जैसे सैनिक होते हैं वो अस्त्र शस्त्रों का लगातार अभ्यास करते हैं, अगर वो लगातार अभ्यास नहीं करेंगे तो समय पर निशाना चूक सकते हैं, दुश्मन पर वो निशाना नहीं लगा पाएंगे। बिना अभ्यास के सही निशाना नहीं लगता है। हम देखते हैं ओलंपिक्स में जो लोग खेलने जाते हैं, जो निशानेबाज होते हैं, वो हर दिन घंटों प्रैक्टिस करते हैं तब जाकर के वो गोल्ड मेडल जीत पाते हैं वहां जाकर के। तो हमारे को अभ्यास चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उतना अभ्यास होगा तब हमारी वो पॉइंट काम करेगी। अब जैसे आत्मा की पॉइंट है, हमारा पहला ही पार्ट है आत्मा का, अगर आत्मा हमें स्मृति में है, मैं आत्मा हूं और जो मेरे संपर्क में आत्मा आ रही है वो भी आत्मा ही है, तो यहां हम देह अभिमान से अगर मुक्त हैं तो कोई भी विकार का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। यानी कभी भी हम दैहिक प्रभाव में, दैहिक आकर्षण में नहीं आएंगे। आज की दुनिया में दैहिक आकर्षण करने वाली बहुत चीजें हैं, माया इस रूप में बहुत है कलयुग में, लेकिन मेरी नजर कहां जानी चाहिए? बाबा कहते हैं मस्तक में सदा ही आत्मा, मस्तक मणि पर मेरी नजर जानी चाहिए, देह पर नजर ही नहीं जानी चाहिए। अगर देह प्रभाव में आ गए, आत्मिक स्मृति नहीं है, देह के प्रभाव में आ गए, तो बाबा कहता है कि अगर वृत्ति से भी देह को टच किया तो माना सांप को टच किया, और सांप को टच किया माना वो काटेगा जरूर, और काटेगा तो उसमें विष होता है, तो फेल हो जाएंगे। भले आत्मा का ज्ञान है लेकिन फेल हो जाएंगे, बाद में याद आएगा। उसी समय हमारी वो पॉइंट काम करे तो हम माया जीत बन जाएंगे। चाहे क्रोध की बात ही क्यों ना हो, ये काम की बात है, क्रोध की बात मानो, कोई गुस्सा करता है या कोई भी ऐसी परिस्थिति जो हमें गुस्सा दिला सकती है, पर अगर मैं शांत स्वरूप की स्थिति में हूं, यानी समाया है हमने उसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरा स्वरूप बन चुका है, मैं शांति धाम की रहने वाली हूं, शांति के सागर की संतान हूं, मेरा कर्तव्य क्या है? शांति देना, शांत रहना और शांति देना। कोई कैसी भी आत्मा है, कैसा भी व्यवहार कर रही है, तो हम अपना कर्तव्य निभाएंगे, ना कि उनके प्रभाव में आ जाएंगे, और ही उनको हम सहयोग देंगे, उनके प्रति रहम दिल बनेंगे, लेकिन तब कर पाएंगे जब मुझे वो स्वरूप में है, स्मृति में है, नहीं तो उस समय फेल हो जाएंगे, बाद में याद आएगा कि अरे मेरे को तो चुप रहना था, मुझे तो शांत रह जाना था, मैंने क्यों बोल दिया, मेरे मुंह से ये निकल गया, ऐसे निकल गया। तो वो है जमा करना। जब हम इस तरह से ज्ञान को यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो हमारा जमा का खाता सहज बढ़ता जाता है। ऐसे ही गुणों का खजाना, बाबा ने जो हमें सर्वगुण संपन्न बनाया है, सर्व गुणों की समझ दी है ना बाबा ने, मधुरता, नम्रता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, पवित्रता, ये जो हमारे गुण हैं, तो समय पर ये गुण हमारे व्यवहार में आते हैं तो हम स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी हम संतुष्ट करते हैं, उनको भी हम सुख देते हैं। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो सबको सुख देता है। तो मतलब हम अपने चलन के द्वारा सेवा करते हैं, जिसको कहते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हम किसी को ज्ञान सुनाने जाएंगे, आप बस्ती में रहते हैं, ज्ञान सुनाएंगे ना अपने परिवार वालों को तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो आपको जानते हैं। लेकिन जब आपके जीवन को वो देखते हैं, आपसे जो उनको सुख मिलता है, आपके व्यवहार से जो उनको शांति अनुभव होती है, उससे वो परिवर्तन होते हैं, वो उनको प्रभावित करेगा। ज्ञान देना उनको प्रभावित करने वाला नहीं है। और ही चार बातें सुना देंगे, आप एक बात सुनाने जाएंगे ना तो वो आपको चार और सुना देंगे कि आपको क्या करना चाहिए, आप ज्ञानी हो, आपको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, आप क्या कर रहे हो। तो आप तो उनके सामने थोड़ा ऊंचा भी नहीं बोल सकते, है ना। तो गुणों से सेवा करना, गुण दान सबसे बड़ा दान कहता है बाबा, गुणों के दान को महादानी रूप में, और वो हमारा खाता जमा करता है। शक्तियों का खजाना जो हम यूज करते हैं, यानी बाबा कहता है शक्तियों का स्टॉक हमारे पास जमा होना चाहिए। शक्तियों का स्टॉक इतना जमा हो, क्योंकि जैसे ही परिस्थिति आए तुरंत उस शक्ति से हम विजय प्राप्त कर लें। शक्तियां ही हमें विजयी बनाती हैं, और इसीलिए शक्तियों का गायन है। वो दिखाती ना, शक्तियां जो हैं वो असुर संहारिणी हैं। दुनिया में जो शक्तियों की पूजा होती है, देवियों की पूजा होती है, असुर संहारिणी है या शेर पर सवारी कर रही है, माना वो प्रकृति जीत की निशानी है। तो वो तभी होता है। अब सहन करने की शक्ति है, रोज हमें यूज करना है, हर दिन। मैं समझती हूं कि हर घंटे ही कोई ना कोई ऐसी बात आती है, हर दिन तो छोड़ो, कोई मेरी बात नहीं मानेगा, हाँ किसी ने गलती कर दी, हमारे मन पसंद नहीं किया, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं कर रहे, या किसी ने हमसे ऐसा व्यवहार कर दिया जो हमें पसंद नहीं, यानी जिसे हम अपमान करना कहते हैं कि मेरा अपमान कर दिया इसने, या किसी ने मेरी ग्लानी कर दी, किसी ने मुझसे झूठ बोल दिया, या किसी ने मुझे धोखा दे दिया। बहुत विश्वास करते हैं हम किसी पर और पता चले हमारे पीठ पीछे वो दूसरा ही काम कर रहा है, हमारे ही बच्चे कर रहे होते हैं, हमें पता नहीं चलता। हाँ, हमारे सामने कुछ और बोलते हैं, पीछे कुछ और कर रहे होते हैं। ये रोज की बातें हैं, रोज इसमें से कोई ना कोई बात हमारे सामने आएगी। तो अगर हम सहन कर लेते हैं तो बाबा कहता है हम दुआओं के पात्र हैं, खासकर बाबा की दुआओं के पात्र हम बन जाते हैं और हमारा जमा होता जाता है। पर कई बार भाई बहने सोचते हैं हम सहन करते हैं ना, लोग हमें कमजोर समझते हैं, कमजोर भी समझते हैं और साथ में हमें दबाते भी हैं और ही हमारा फायदा उठाते हैं। ये तो कुछ बोलने वाला नहीं है, ये तो चुप रहेंगे, इनके आगे कुछ भी कर लो, बच्चे ही नहीं सुनते हैं क्योंकि हम बच्चों को कुछ बोलते ही नहीं है, क्या कहेंगे। हाँ, आप सभी बैठे हैं, आपका अनुभव है ना, रोज परिवार में रहते हैं, रोज की बातें हैं, क्या कहेंगे। बच्चों का सहन करते हैं तो बच्चे ही सिर पर चढ़ जाते हैं, क्या बोलेंगे। हाँ, जो समझते हैं सिर पर चढ़ जाते हैं वो हाथ उठाएं। धीरे धीरे उठा रहे हैं, थोड़ा लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, और जो समझते हैं नहीं, हम उनको जितना समझते हैं, बच्चों को समझते हैं, समझकर चलते हैं धैर्य से, सहन करना माना उतना धैर्य से, प्यार से उनके साथ व्यवहार करना, समझाना उस तरह से, और उससे फिर वो बदलते भी हैं। वो हाथ उठाओ। अच्छा, अभी समझ में आ गया अंतर। हाँ, जिन्होंने उसमें हाथ उठाया वो मेजॉरिटी है। तो गुण जो सहन शक्ति है वो हमें विजय का अनुभव कराती है। हो सकता है उसमें हमें धैर्य जरूर रखना पड़ता है, यही तो हमारा पेपर है। हमें दो बार, तीन बार, चार बार, क्योंकि हर आत्मा के संस्कार कड़े होते हैं ना। अब भले बच्चे हैं, इस जन्म में बच्चे हैं, लेकिन अनेक जन्मों की यात्रा तो वो आत्मा भी करके आई है ना, संस्कार तो लेकर के आई है अपने साथ। तो अगर उसके संस्कार भी हम बदलना चाहते हैं तो हमें भी चार बार, पांच बार, क्या 10 बार, जिसको बाबा कहता है मैंने 10 बार सहन किया। कई बार लोग कहते हैं 10 बार मैंने सहन किया, अब 11वीं बार तो निकल ही जाएगा ना मुंह से। 11वीं बार में फिर हम एक्सक्यूज देते हैं कि 10 बार तो हम चुप रहे ना। तो बाबा कहता है नहीं, हमेशा ही चुप रहेंगे तो उस सहनशीलता का जो परिणाम है वो मधुर होगा, यानी वो उसके जीवन को बदल देगा, क्योंकि उसके संस्कार को बदलने में इतना टाइम जरूर लग जाता है। एक तो ये कि हमें सहन शक्ति को असीम रूप से यूज करना है। इतनी शक्ति हमें बाबा से मिलती है, जितना हमारा योग बल होगा उतनी हमारी सहन शक्ति बढ़ती जाएगी, हमें महसूस ही नहीं होगा कि हम सहन कर रहे हैं। जैसे हम सुनते हैं यज्ञ के शुरू में ब्रह्मा बाबा के सामने कैसे कैसे पेपर आए, जो बाबा जिसने कभी दुनिया का एक अपशब्द नहीं सुना, अपने लौकिक जीवन में इतना सम्मान मिलता था बाबा को, और जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई सारा समाज उनके विरोध में खड़ा हो गया, इतनी गालियां खाई, कलंक लगाए बाबा के ऊपर, लेकिन बाबा को लगा ही नहीं कि मैं सहन कर रहा हूं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि शिव बाबा पर वो निश्चय था, हिम्मत थी कि अनजान आत्माएं हैं, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हम भी जब परिवार में ज्ञान में चलते हैं और हमारे जो साथ वाले हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी हैं, वो ज्ञान में नहीं चलते, हम सबको कमेंट्स तो सुनने ही पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं सुनने पड़ते, चलो बाबा जितनी गालियां नहीं खाते हम, लेकिन थोड़ा बहुत तो हर एक को सुनना ही पड़ता है। तो हमें लगता है कि हम सुन रहे हैं, नहीं लगता। हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि हमें पता है कि इनको समझ नहीं हमें क्या मिला है और कौन मिला है। जो प्राप्ति है वो इतनी ऊंची है, इतनी श्रेष्ठ है कि उसके आगे दुनिया की छोटी मोटी बातें हमें असर ही नहीं करती। यानी सहन हम कर रहे हैं महसूस ही नहीं होता है। अगर निश्चय नहीं है बाबा पर, पूरा निश्चय नहीं है, आधे आधे हैं, है ना, ऐसा होता है कि पूरा निश्चय नहीं बैठा, फिर किसी की थोड़ी भी बात हमें बहुत बड़ी लगेगी, फिर हम मुंच जाएंगे, फिर हम उनकी तरफ खींच भी सकते हैं, बाबा को छोड़ करके उस तरफ भी जा सकते हैं, हमारा पलड़ा बदल भी सकता है। तो वो स्थिति हो हमारी कि हमें महसूस ही ना हो कि हम किसी का सहन कर रहे हैं, उसको हम शक्ति कहेंगे। और सहन किया उसके साथ साथ समाना भी है, ऐसे नहीं कुछ भाई बहने सहन कर लेते हैं लेकिन समा नहीं पाते उसको। किसी के सामने तो सहन कर लेंगे, दूसरे के सामने बोल देंगे, मानो कोई बड़ा है हमारा और बड़े के सामने तो हम नहीं बोल सकते। काम करते हैं, वहां कोई ऑफिसर है हमारा, या हमारे घर में जो भी हमारे से सीनियर हैं, मानो पिताजी हैं या कि सास है, जो भी है, उनके सामने हम नहीं बोल सकते, चुप रह जाएंगे, है ना। लेकिन जिसके सामने बोल सकते हैं उनके सामने फिर हम शुरू हो जाएंगे कि कितना हम सहन करते हैं, ये कैसे कैसे हमारे साथ करते हैं। तो बाबा कहते हैं सहन कर लिया लेकिन अगर समाया नहीं तो क्या हुआ? सहन किया वो तो कमाल की, लेकिन जो वर्णन कर दिया चार लोगों के सामने, वो उसको धमाल में बदल दिया, तो फिर वो हमारा जमा नहीं हुआ। सहन किया वो माइनस हो गया आपने, अगर उसको वर्णन कर दिया तो। दूसरों की कमियों को भी हमें समाना है, समाने की शक्ति। जब भी हम साथ में रहते हैं, संगठन में रहते हैं, परिवार में भी 4-6 का संगठन तो होता ही है, या हम बाबा के घर में सेंटर पर रहते हैं तो भी 2-4 बहनें साथ में रहती ही हैं, या जो भी भाई बहन साथ में रहते हैं, सेवा में जब आते हैं तभी भी संगठन होता है। तो हम सबके संस्कार भिन्न भिन्न हैं और हर एक के अंदर अपने अपने प्रकार की कमियां हैं, तो उनकी कमियों को स्वीकार करना, है ना, ऐसे नहीं कि सब मेरे जैसे हो जाएंगे, हम दूसरों को अपने जैसा ढालने की कोशिश करते हैं कि मैं ऐसा करती हूं ना, इसलिए इसको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर ये ऐसा नहीं करते तो वो मेरे लिए असहनीय है, मतलब फिर हमारी सहन शक्ति भी जवाब देने लगती है। हम पहले सिखाने की कोशिश करते हैं उनको, नहीं ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, और फिर अगर वो नहीं कर रहे तो फिर हम नाराज हो जाते हैं, या नाराज भी हुए साथ साथ फिर वो समाने की शक्ति भी खत्म। तो अगर हम अपना परिवार समझते हैं तो अपने परिवार की कमियों को हम कभी बाहर नहीं ले जाते, होता है ना अपनी फैमिली की, मेरे ही बच्चे की कमी क्या हम दूसरों को जाकर के कहेंगे, हमें लगता है मेरे बच्चे की कमी तो मेरी कमी है। तो ऐसे ही ये भी हमारा दैवी परिवार है और हमें भी एक दो की कमियों को समा लेना है, उसका वर्णन नहीं करना है, आपस में भी नहीं, उनके गुणों को गुणग्राही बनना है, बाबा ने हमें सिखाया। हम दादियों को देखते थे, कभी भी दादियां एक दूसरे की कमियों का वर्णन, या किसी भी भाई बहनों की, दादियों के पास तो सारे किस्से आते थे, इस सेंटर में ये हुआ, वहां के भाई बहनों ने ऐसा किया, या ऐसा जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब दादियों के पास ही आएंगे ना हल होने के लिए, पर बात जहां हुई वहां की वहां ही खत्म। उसके बाद उसका कोई वर्णन हो रहा है, आपस में कोई बातचीत हो रही है, कभी नहीं। जैसे हम सुनते थे मम्मा के समय कचहरी करते थे रोज, क्योंकि 400 लोग रहते थे, कोई कम लोग तो नहीं रहते थे उस समय भी यज्ञ में, तो 400 लोग हैं माना कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही ना, तो रोज रात को कचहरी होती थी मम्मा के साथ। लेकिन उसके बाद मम्मा के मुख से किसी के बारे में भी कुछ निकल जाए, तो ये गंभीरता का गुण ये हमारे जमा के खाते को बहुत बढ़ाता है। हालांकि छोटी छोटी बातें हैं रोज की जिंदगी की, हमारी ये छोटी छोटी बातें हमें लगती हैं, लेकिन इनसे ही हमारा खाता खाली होता रहता है। इसको बाबा कहते हैं सूक्ष्म पाप, यानी मोटे रूप में नहीं हमें दिखाई देता, कई बार हम इसको गलत भी नहीं समझते ना, मतलब हमें लगता है ये तो चलता ही है ना, ऐसा तो होता ही है ना, हम इसको बहुत साधारण सा समझते हैं, और इसीलिए वो हमारा फिर जमा का खाता खाली करता रहता है। फिर है परखने की शक्ति, यहां माया के सूक्ष्म रूपों को परखने की शक्ति चाहिए। माया के मोटे रूप तो हमें पता है, लेकिन सूक्ष्म रूप जो है कई बार उसमें हम धोखा खा जाते हैं। जैसे हम सुनते हैं कि सीता ने किससे धोखा खाया, सोने का हिरण था नहीं लेकिन मायावी था, लेकिन वो नहीं परख पाई कि ये मायावी है, फिर उसने आवाज निकाली उसको भी वो परख नहीं पाई, उसने राम की आवाज समझा, फिर रावण आया साधु के वेश में उसको भी वो नहीं परख पाई कि ये साधु नहीं है रावण है, परिणाम क्या हुआ, रावण के चंगुल में फंस गई ना, राम से वियोग हो गया उसका। तो यहां भी माया के जो सूक्ष्म रूप हैं, मानो लगाव झुकाव प्रभाव है, अब हम किसी के गुणों से प्रभावित होते हैं, किसी की सेवा से प्रभावित होते हैं, किसी की पालना से, किसी के स्नेह से, किसी के सहयोग से, हरेक की कोई ना कोई विशेषता है। तो अगर हम प्रभावित हुए उसके लगाव में, पहले झुकाव होता है फिर लगाव होता है, तो उस आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब बनने लगता है, बाबा से हमारा योग टूटने लग जाता है, यानी बाबा से फिर योग में जो एकाग्रता होनी चाहिए वो नहीं बनती, तो जो शक्तियां आत्मा में भरनी चाहिए वो नहीं भरती, यानी वो वही है लीकेज हो जाती है, जिसको कहा कि जमा नहीं होगा, शक्तियों की लीकेज होती है, कि मानो आपने बाल्टी में पानी भरने की कोशिश की पर उसके तले में छेद है, तो क्या होगा, ऊपर से भरेंगे और नीचे से निकल जाएगा। तो योग भी कर रहे हैं, बाबा को याद भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, अपने सब नियम धारणाओं पर चल रहे हैं ब्राह्मण जीवन की, लेकिन शक्ति नहीं भर रही है क्योंकि लीकेज है, और वो लगाव झुकाव जो है वो लीकेज का काम करता है। ऐसे ही मानो आवेश में आ जाते हैं किसी के प्रति, कोई घृणा भाव मन में हो जाता है, थोड़ा मैंपन मेरापन, ये सब सूक्ष्म रूप है माया के, जिससे हमें परखने की जरूरत होती है। फिर दूसरा परखने का हमें चाहिए, कोई भी आत्मा को जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो उसकी चाहना को हमें परखना है कि वो आत्मा बाबा के पास क्यों आई है। जिसको बाबा कहते हैं नब्ज देखो, डॉक्टर भी पहले नब्ज देखता है, बीमारी को परखता है, फिर दवाई देता है, तब इलाज सही होता है। तो ऐसे ही जब आप उसको परखोगे, इसको शांति चाहिए, तो उसको उसी तरह से हम संतुष्ट करेंगे। किसी को शांति चाहिए और हम सृष्टि चक्र का ज्ञान सुनाना शुरू कर दें उसको, जैसे पानी के प्यासे को अगर हमने भोजन देना शुरू कर दिया तो वो संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसको तो पानी चाहिए, उसे प्यास लगी है। तो ऐसे उस आत्मा को उस समय जो आवश्यकता है उस अनुसार उसे संतुष्ट करना, ये परखने की शक्ति अगर होगी तो सेवा में सफलता होगी। और इसीलिए अपने इतने अलग अलग विंग्स बने, आज हम देखते हैं अलग अलग प्रोफेशंस की अलग अलग तरह से सेवा होती है, क्योंकि उस प्रोफेशन की क्या आवश्यकता है उसके अनुसार उस ज्ञान को ढाल करके उनको सुनाते हैं, तब वो बाबा के समीप आ पाते हैं, तब वो समझ पाते हैं कि हाँ ये हमारे लिए इतना उपयोगी है, इतना यूजफुल है हमारे लिए। फिर निर्णय करने की शक्ति, इसमें एक और भी परखने की शक्ति में हमें चाहिए कि हम लोगों की भाव भावनाओं को भी परख सकें, वाइब्रेशंस को कैच कर सकें, वृत्तियों को कैच कर सकें। बाबा कहते हैं अंत समय में ये बहुत आवश्यक होगा, क्योंकि उस समय जो तमो प्रधान वृत्ति वाली आत्माएं हैं, जिसको बुरी वृत्ति बाबा कहता है, अभी कल की मुरली में ही बाबा ने बोला ना कि कोई भी ऐसी बुरी वृत्ति वाली आपकी आत्मा आपके सामने आएगी तो उसको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा। तो परख, पहले हमें परख तो हो कि भई इस आत्मा की वृत्ति सही नहीं है, वो वाइब्रेशन से पता चलता है। तो जितना हमारे अंदर ज्ञान की महीनता होगी उतना हम वाइब्रेशंस कैच कर सकेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशंस और नेगेटिव वाइब्रेशंस समझ में आते हैं, थोड़ा सा हमें अटेंशन देना होता है तो हम सावधान रह सकते हैं। यानी ये आत्मा से हमें अपने आप को सावधान रखना है, या न्यारे कैसे हो जाएं, सहज न्यारे हो जाना है, मतलब उनके संग में हम अधिक नहीं जाएं, और उनकी सेवा कैसे कर सकते हैं। अगर हमने परख लिया तो अब उस आत्मा को कैसे उस चीज से मुक्त कर सकते हैं वो हम उस तरह से यूज कर सकते हैं। निर्णय करने की शक्ति कैसे हम जमा करते हैं, तो बाबा को हम सामने रखें, ब्रह्मा बाबा को सामने रखें जहां भी हम दुविधा में आते हैं। बहुत बार हमारे प्रवृत्ति के कार्यों में हमें लगता है कि हम समाज को निभाएं या ज्ञान के अनुसार चलें, क्योंकि समाज तो बिल्कुल अलग तरह से चलता है, उसके अनुसार हम निर्णय लेने जाएंगे तो श्रीमत का उल्लंघन होता है, और अगर श्रीमत के अनुसार चलने जाएं तो फिर रिश्तेदार नाराज होते हैं, जो समाज वाले हैं उनको हम नाराज कर रहे हैं, तो दुविधा में फंस जाते हैं क्या किया जाए, इधर या उधर। तो बाबा हमेशा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने क्या किया वो देखो, हमें भी करना है। बाबा ने सब कुछ किया, समाज की हर बात को निभाया, बाबा तो था ही गृहस्थी ना, प्रवृत्ति वाला ही था बाबा तो। अब जैसे बच्चे की शादी की बात सामने आई, बाबा का बेटा था जिसकी शादी नहीं हुई थी जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, वो कुछ समय यज्ञ में भी रहा, लेकिन बाद में उसने इच्छा जताई कि मुझे जाना है, मुझे बिजनेस करना है और मुझे शादी करनी है, तो बाबा ने भेज दिया उनको कि ठीक है आप जाओ, आप उन बाबा के जो रिश्तेदार थे उनके पास भेज दिया कि वो आपकी शादी कराएंगे। तो ऐसा नहीं कि अगर बच्चे की इच्छा है तो बाबा ने उनको मना कर दिया, क्योंकि अगर उसकी इच्छा नहीं है तो किसी को भी हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो जैसे हमारे बच्चे हैं, अगर उनके निमित्त हमें ही निर्णय लेना है, अगर वो ऐसा चाहते हैं तो बाबा को देखें, बाबा ने क्या किया, जो बाबा ने किया वही हमें करना है ना? और ऐसे ही सामना करने की शक्ति जो है वो भी हम यूज करते हैं, हमारी सामना करने की शक्ति बहुत बढ़ जाती है जब बाबा हमारे साथ होता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्व समर्थ है, और जब हम उस साथ को यूज करते हैं तो तो हमें लगता ही नहीं कि परिस्थिति कैसे गुजर गई। जैसे अभी कोरोना की परिस्थिति आई दुनिया पर, तो हमने भी सामना किया ना, हम बाबा के बच्चों ने भी सामना किया और दुनिया वालों ने भी किया, कर भी रहे हैं। अंतर है ना दोनों के सामना करने में, अंतर है या नहीं है? कितना भय दुनिया में उसको लेकर के, है ना, कितना टेंशन, कितनी चिंता, कितना सबका जीवन ऊपर नीचे हो गया। हमारा भी हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन हमें समय का ज्ञान है। बाबा ने हमें तीनों कालों का भी ज्ञान दिया है और हमें समझ है ये होना ही है, दुनिया में ये परिस्थितियां अभी आनी ही हैं। और बाबा हमारे साथ है तो हमारे को वो भय नहीं होता। और मानो हो भी गई, मानो बीमारी हो भी गई, ऐसा तो नहीं है कि बाबा ने कोई गारंटी दी है कि आप बाबा के बच्चे हो तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। हो भी गई मानो, हमें पता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की तो कोई मृत्यु नहीं होती है। मुझ आत्मा का भविष्य तो सदा ही उज्जवल है, बाबा ने हमें एवर रेडी बनाया है, अचानक का पाठ पढ़ा रखा है, कभी भी कुछ भी अचानक हो सकता है ना। बाबा ने तो कहा कि अचानक की बातें कभी भी आ सकती हैं जीवन में, तो हम तैयार हैं, एवर रेडी हैं। और आने वाली दुनिया में हम देवता बनने वाले हैं, इतनी ऊंच श्रेष्ठ हमारी हमारा भविष्य है। तो भय की कोई बात नहीं है ना, सामना करने की शक्ति जो है वो इस तरह से हमारे अंदर है, क्योंकि ज्ञान के तीनों कालों की समझ और प्लस बाबा हमारे साथ हैं। फिर हमें पता है हर बात में कल्याण है, कुछ भी बुरा भी होता है जीवन में, कोई ऐसी बातें होती हैं तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि हम आत्माएं कर्मातीत बन रही हैं। तो उस कर्मातीत बनने के प्रोसेस में सारे हिसाब किताब इस तरह से चुकतू होने ही हैं, सभी को चुकतू करने हैं अपने, चाहे हम बाबा के बच्चे हैं चाहे दुनिया की आत्माएं हैं। दुनिया की आत्माएं जो है वो सजा खा करके चुकतू करेंगी और हम ज्ञान बल योग बल से अपने हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। सहयोग करने की शक्ति, जितना हम समय पर सहयोग करते हैं, सहयोग दूसरों के लिए होता है, तो जब हम दूसरों को समय पर काम आते हैं, जब उनको हमारी आवश्यकता है, तो वो सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। इसीलिए कहते हैं सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। वो हम एग्जाम्पल दिखाते ना, कलयुगी पर्वत कैसे उठा, सबकी उंगली लगी, तो सर्व का सहयोग है तो ये पूरा विश्व ही परिवर्तन हो रहा है। आज कोरोना के समय भी हम देखते हैं कि कैसे लोग एक दूसरे के सहयोग के लिए भी आगे आए, जिनको खाने को नहीं मिल रहा था उन्हें लोगों ने आगे निकल करके सबने अपनी रीति से सहयोग दिया, जो जैसा सहयोग दे सकते थे। तो वो हमारा जमा होता है, ऐसे ही समेटने की शक्ति हमें यूज करनी है। जो समय है वो विस्तार को सार में लाने का है, सब कुछ समेटने का है। तो उसमें बाबा हमें खास कहते हैं कि जो हमने दुनिया में अपने विस्तार कर रखे हैं, चाहे वो संबंधों का विस्तार है, चाहे वो धन कमाने का विस्तार है, या और भी जैसे हमारी पास्ट की बातें हैं, उसको हम मन में बहुत विस्तार करते हैं, मन में बहुत लाते हैं उसको, मन व्यर्थ के चिंतन में बहुत चला जाता है। तो फुल स्टॉप लगाना, समेटना माना कंट्रोलिंग पावर हो हमारी मन के ऊपर। जब चाहे हम मन को स्टॉप करना चाहें, जिस स्थिति में मन को एकाग्र करना चाहें, बाबा की याद में स्थित करना चाहें, वो हम कर सकें। मन पर कंट्रोल ही हमें अंतिम पेपर में पास करेगा। अगर मन का कंट्रोल नहीं है, योग के लिए सारी बात इसमें ही आती है कि एकाग्रता हो, हमारे मन को कंट्रोल हम कर सकें, यही कहते हैं ना, शुरू से हम यही सीखते हैं जब हम राजयोग सीखते हैं तब। और यही अंत समय में भी होना है कि उस समय हमको हलचल में लाने वाली परिस्थितियां इतनी होंगी, बुद्धि को खींचने वाली बातें इतनी होंगी, लेकिन उसमें होते हुए भी हमारा मन एक बाबा की याद में स्थित हो जाए या स्टॉप हो जाए एकदम बिंदु में, जिसको बाबा कहते हैं बिंदु बनकर, बिंदु बाप की याद में स्थित हो जाओ, बिंदु लगा सको, तो वो हमें अभी से अभ्यास करना है। बहुत काल का अभ्यास होगा तभी हम उसमें सफल होंगे। उस समय हम सोचेंगे हम कर लेंगे, नहीं होने वाला है। तो जब भी हमें ये चांस मिलता है, अभी जैसे भट्टियों के चांस हमें क्यों मिलते हैं, बाबा हमें ये अवसर क्यों देते हैं, ताकि हम अपनी चेकिंग कर सकें कि कितना हम कर पाते हैं। जो भी हमारी कमी है उस कमी को भरने का समय अभी है। फिर अंत समय में भी अभी हम अंत समय के नजदीक हैं, पर अंत के भी अंत समय जब आएगा तब तो वो परीक्षा का समय होगा, तब वो अभ्यास का समय नहीं होगा। उस समय तो फुल स्टॉप लग ही जाना चाहिए। तो हम सभी तो पास होना चाहते हैं ना, पास भी क्या, पास भी डोनर होना चाहते हैं, ऐसे ही कहेंगे। तो शक्तियों का खजाना हमारा स्वयं के लिए भी जमा हो, यानी यूज होता रहे जैसे जैसे परिस्थितियां आए, और दूसरों को भी हम दे सकें। अंत समय के लिए बाबा कहता है कि आत्माएं इतनी कमजोर होंगी कि खुद का पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगी, आपकी एक दृष्टि ही उनको वो शक्ति दे देगी जो उनको चाहिए। पर पहले आपके पास होगी तभी तो दे पाएंगे ना, नहीं तो कैसे दे पाएंगे। अपना जमा होगा तब हम उसको दान कर सकेंगे। किसी को हिम्मत चाहिए, किसी को सहारा चाहिए, किसी को आशा चाहिए, किसी को उमंग उत्साह चाहिए। क्योंकि निराश आत्माएं होंगी, जो निराश कमजोर आत्माएं होंगी उन्हें जो उस समय चाहिए उस समय तुरंत हम दे सकें। वो पावर पहले हमारे अंदर होगी तभी दे पाएंगे। फिर है हमारा समय का खजाना। जो संगम युग का समय है वो कितना वैल्यूबल है। एक एक सेकंड बाबा कहता है वर्षों के बराबर है। और ये जो समय मिला है ये हमें वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि कितना समय मिला है हमें, हम कितना समय से ज्ञान में है। संगम युग को तो 84 साल हो गए, हम कितना समय से ज्ञान में है। हम होंगे 10 साल से ज्ञान में, 20 साल से ज्ञान में। फिर अंत समय तक हम रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले ये भी कोई गारंटी नहीं है। जो विनाश होगा वो अलग बात है, लेकिन मेरे इस जीवन का अंत कब होगा वो थोड़ी हमें मालूम है। तो हमें तो इतने ही कम समय में पूरा वर्षा पाना है ना बाबा से, तो उस हिसाब से ये समय हमारे लिए बहुत कीमती है। हम वेस्ट कैसे करते हैं? ठीक है, हमने ज्ञान योग कर लिया जो नियम से करते हैं हम, फिर उसके बाद सारा दिन, सारे दिन में आपस में कई बार हम व्यर्थ की बातें कर लेते हैं, समाचारों की लेन देन करते हैं मानो। फिर कहेंगे हमने कुछ गलत थोड़ी किया, आपस में ऐसे ही बातें ही तो कर रहे थे। तो बाबा कहते हैं कि ठीक है, हमने गलत नहीं किया, साधारण किया, हमने जमा तो नहीं किया ना। जो साधारण होता है उसमें जमा नहीं होता है। फिर अगर हमने किसी को दुख नहीं दिया तो सुख किसको दिया? जमा किसका होगा? जो सुख दिया, नहीं तो वो वेस्ट गया ना। फिर आज सोशल मीडिया इतना है, उसमें जरा सा आप चले जाओ कितना टाइम वेस्ट हो जाता है। हाँ, थोड़ा सा टेलीविजन के सामने बैठ गए, कितना टाइम, उसको वेस्ट ही कहेंगे ना। तो वो जो हमारा वैल्यूबल समय है वो इन चीजों में कई बार बहुत व्यर्थ चला जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। विघ्नों में भी कई बार हम टाइम वेस्ट करते हैं, जब हम क्यों क्या में चले जाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ज्यादा विस्तार में चले गए, बाबा ने तो कहा है कि हमें कल्याण का बिंदु लगाना है। बाबा की मदद ली, कल्याण का बिंदु लगाया और उस विघ्न को पार किया। उसमें भी ज्यादा टाइम हमें नहीं देना है, ज्यादा शक्तियों को उसमें खर्च नहीं करना है। श्वासों का खजाना बाबा कहता है याद के लिए। क्योंकि जितना हम निरंतर योगी बनेंगे ना, श्वासों श्वास सिमरण करो, ये गायन है, एक्चुअली ये भक्ति का गायन है कि हर श्वास में भगवान की याद रहे। तो जो सच्चे भक्त होते हैं, जो परम भक्त होते हैं जिनको कहते हैं, वो क्या करते हैं, जो मंत्र मिला होता है गुरु से या नाम मिला होता है, वो हर श्वास में उसको जपने की कोशिश करते हैं, जिसको अजपा जाप बोलते हैं वो। और यहां बाबा हमें क्या कहते हैं, हमारा मंत्र मन मना भवे, मतलब बाबा को याद करो। तो निरंतर योगी माना हमारी जीवन ही है योग की। निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी, हर कर्म में बाबा की याद रहे। इतने संबंध बाबा ने हमें दिए हैं, तो कोई ना कोई संबंध से या कोई ना कोई जो स्थिति है योग की, उससे किसी ना किसी रूप में बाबा की याद बनी रहनी चाहिए। चाहे वो साधारण रीति से है, चाहे हम बैठ करके योग करते हैं, पावरफुल योग करते हैं, ज्वालामुखी योग करते हैं, तो हम कहेंगे हमारे स्वास्थ्य सफल हो रहे हैं और उतनी ही कमाई, जितना याद उतनी कमाई हमारी बढ़ती जाती है। जिसको बाबा कहता है एक बिंदु लगाते हो एक के आगे तो 10, दूसरा बिंदु लगाया माना 0 लगाया तो 100, और तीसरा बिंदु लगाया तो 1000, ऐसे कमाई बढ़ती जाती है, मल्टीप्लाई होती जाती है। पर चलो मानो हम निरंतर योगी नहीं बन पाते, तो भी बाबा ने हमें 8 घंटा बोला कि 8 घंटा मुझे याद करो, और 8 घंटा भी नहीं तो 4 घंटा ही, 4 घंटा जो समझते हैं हमारा 4 घंटे का चार्ट होता है रोज योग का, कम से कम 4 घंटा तो हम याद करते ही हैं, वो हाथ उठाए हैं, थोड़े भाई बहने हैं जो 4 घंटे का चार्ट, और 8 घंटे का जो समझते हैं हमारा चार्ट है, सब मिला के कर्म योग मिला करके, क्योंकि बैठ करके तो 8 घंटा कम ही होता है, बैठ करके किसी का 8 घंटे का चार्ट है योग का, बैठ करके 8 घंटा तो नहीं हो सकता है, लेकिन कर्म योगी बनकर के 8 घंटा भी कुछ भाई बहनों ने हाथ उठाया। वैसे तो कोशिश करना है कि निरंतर हमारा चलता रहे, है ना, बाबा की याद बनी ही रहे, लेकिन नहीं तो 8 घंटे का चार्ट, तो इसीलिए बाबा हमें चार्ट भरने के लिए कहते हैं, याद का चार्ट हम चेक करेंगे तो फिर हम उस पर अटेंशन देकर के अपनी याद को बढ़ाएंगे। और ऐसे ही संकल्प का जो खजाना है, जितने शुद्ध संकल्प चलेंगे, जितने श्रेष्ठ संकल्प चलेंगे, जितने समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना मन की शक्ति जमा होगी। मन की शक्ति जमा है तो हम सुख शांति की किरणें फैलाएंगे, अपने आसपास का जो भी वातावरण है उसे हम पावरफुल बनाएंगे, और हम पूरे विश्व की आत्माओं की भी सेवा करते हैं एक स्थान पर बैठे हुए, मनसा सेवा हम कर सकते हैं, दुनिया की जिस आत्मा को जो आवश्यकता है शांति की, शक्ति की, हम एक स्थान पर बैठे हुए भी दे सकते हैं। अभी हमने लॉकडाउन के समय कौन सी सेवा की, ज्यादा मनसा सेवा ही की ना, सेवा के लिए जा तो नहीं सकते थे, ना वाचा सेवा कर सकते थे, ना कर्मणा सेवा कर सकते थे, लेकिन मनसा सेवा तो हम सभी, तो बाबा कहता है उसमें चांस की भी बात नहीं है, उसमें समय की भी बात नहीं है, उसमें शरीर की भी बात नहीं है कि मेरा शरीर नहीं चलता है या मुझे ये तकलीफ है वो तकलीफ है। अगर आपका मन शक्तिशाली है, मन स्वस्थ है, तो कहीं भी बैठे हुए हम मनसा सेवा कर सकते हैं, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना कि ये जो सेवा है वो तब सफल होती है जब हमारी सदा ही हर आत्मा के प्रति शुभ भावना है। कई बार ऐसा नहीं हो पाता है, जिनके जिनकी हमारे प्रति शुभ भावना है उनके प्रति तो हम भी शुभ भावना रख लेते हैं, हमारे प्रति जो अच्छा व्यवहार करते हैं, हमारे प्रति जिनके विचार मिलते हैं उनके साथ हम भी अच्छे होते हैं, लेकिन जरा भी कोई विरोधी भाव वाला आ गया या जिसका हमारे से टकराव हो गया, या कोई भी ऐसा जिसने हमें दुख दे दिया, उसके प्रति भी मेरी शुभ भावना रहे, क्या कहेंगे, आसान है या मुश्किल है ना? यहां पर कई बार हम फेल हो जाते हैं कि उनके जैसी ही फिर हमारी भावनाएं बनने लगती हैं, तो हमारी मनसा सेवा भी फेल हो जाती है, फिर हम सोचते हैं हम इतना इसको योगदान देते हैं फिर भी असर क्यों नहीं होता, असर क्यों नहीं होता, क्योंकि हम वो जितने नेगेटिव हैं उतने नेगेटिव हम भी हैं, बस योग के समय योगदान दे देते हैं, बाकी तो हमारे मन में उनके प्रति नेगेटिव ही चलता रहता है, तो वो मनसा सेवा थोड़ी काम करेगी, उसकी भी विधि है ना, तो भी हमारी शुभ भावना रहे, तो ये हमारा अभ्यास या तपस्या जिसे हम कहें कि वो तपस्या है, सूक्ष्म हमारा अटेंशन चाहिए उसके ऊपर, तब हम जमा कर पाते हैं। फिर जो भी हम सेवाएं करते हैं, जैसे बाबा ने ज्ञान योग धारणा सेवा की बात की, सेवा हमारे भाग्य को जमा करती है, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा हम सेवा करते हैं, लेकिन सेवा की विधि है। अगर हम विधि पूर्वक सेवा करते हैं तो हमारा फुल जमा होता है। जैसे बाबा ने मुरली में कहा, निमित्त निर्माण और निस्वार्थ भाव से की गई सेवा जमा होती है। जिस सेवा में मैंपन और मेरापन आ जाता है, यार मैंने इतनी सेवा की फिर भी मेरे को पूछते नहीं है, मैं सेवा कर रही हूं है ना, पर नाम तो किसी और का हो रहा है, या इच्छा रखते हैं सेवा में, जैसे स्वार्थ भाव रखते हैं कुछ ना कुछ, जैसे भक्ति में लोग भगवान को याद करते हैं तो कोई ना कोई कामना होती है ना पीछे, उस तभी याद करते हैं, तभी व्रत करेंगे, तभी मंदिर जाएंगे, स्वार्थ हो गया ना, अपना स्वार्थ पूरा करना है इसीलिए भगवान को याद कर रहे हैं। तो यहां भी वो भक्ति के संस्कार कहीं कहीं इमर्ज होते हैं, तो सेवा भी कर रहे हैं तो कोई ना कोई इच्छा रख के कर रहे हैं बाबा से कि हाँ हम इतना बाबा के प्रति सेवा कर रहे हैं, फिर बाबा मेरे प्रति ऐसा कुछ करे जो भी मैं चाहती हूँ, तो फिर वो जमा नहीं होता, कर देगा बाबा, आपकी मनोकामना पूरी कर देगा, वो तो भगवान है, सर्वशक्तिवान है, उनके हाथ में है, लेकिन जमा नहीं होगा वो। तो जमा हमारा तभी होता है जब हम दिल से सेवा करते हैं, सच्चे दिल से सेवा करना, और एक होता है दिमाग के आधार पर सेवा करना। मुझे नॉलेज है कि मुझे करना चाहिए क्योंकि मुझे बाबा ने ये समझ दी है, तो एक होता है नॉलेज के आधार पर हमने कर दिया उसको, लेकिन दिल से नहीं किया तो उसमें भी अंतर पड़ जाता है। ऐसा नहीं नहीं जमा होगा, जमा होगा, लेकिन परसेंटेज में जमा होगा। फिर मानो अगर हमें यही ही प्राप्ति हो जाती, जिसको बाबा कहता है कच्चा फल खा लिया, किसी ने मेरी महिमा कर दी, हमने सेवा की और वो बहुत अच्छी लगी किसी को, अच्छी सेवा की हमने, उन्होंने हमारी तारीफ कर दी, फिर हमने उसे स्वीकार भी कर लिया, फिर हमने उसका वर्णन भी कर दिया कि देखो मैंने कितनी अच्छी सेवा की ऐसे ऐसे, तो क्या हुआ, हमने वो फल यही खा लिया, वर्णन किया माना आधा हमारा यही हमने खत्म कर दिया। जैसे दुनिया में भी करते ना लोग, दान करते हैं और अगर वो दान का वर्णन कर देते हैं या दान का वो अपना नेम प्लेट बनवा लेते हैं कि मैंने इतना दान किया, तो हम कहते हैं ना कि उसने अपना यही खा लिया, उसको वो जमा नहीं हुआ। तो सेवाओं में भी ऐसे ही है कि जितना हम गुप्त सेवा करते हैं, गुप्त दान महापुण्य कहता है बाबा, एक तो तुरंत दान महापुण्य और दूसरा गुप्त दान महापुण्य। तो जितना हम गुप्त रहते हैं, माना बाबा की नजरों में तो हम हमेशा ही हैं, भले ही दुनिया वालों के सामने हम गुप्त हैं वो अलग बात है, तो वो गुप्त सेवा का 100% जमा होता है। और ऐसे ही जो शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, यानी जो हमारी वाणी है, वो वाणी हमारी किस प्रकार से, अगर हमारे मधुर वचन है, सुख देने वाले वचन है सभी को, तो वो जमा होता है। और अगर हमारे शब्द ऐसे हैं कि जो भी हम बोलते हैं वो किसी को लग जाता है, बुरा लग जाता है, कभी हमें नहीं पता चलता कि हमने ऐसा क्या बोल दिया जो उसको बुरा लग गया, कई बार ऐसे भी होता है, हमें लगता है मैंने तो ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन कुछ इस तरह से हम कहते हैं कि वो उनको लग जाता है, तो उसका भी प्रभाव हमारे खाते पर पड़ता है। माइनस खाता हमारा कैसे होता है कि कोई भी विकारों के वशीभूत होकर जो कर्म होते हैं वो हमारे को 100 गुना दंड का भागी बनाते हैं। जैसे बाबा कहता है, बाबा की याद में श्रीमत अनुसार किया गया कर्म पदम गुना क्षमा करता है, और विकारों के वश किए हुए कर्म हमारे 100 गुना माइनस भी करता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा बाबा काम विकार के लिए कहता है कि अगर काम विकार के वश हुए तो अब तक की कमाई चट हो जाती थी, बाबा की भाषा है। जैसे 5वीं मंजिल से गिरने की बात है तो फिर नए सिरे से शुरू करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है कि काम विकार के वश कोई भी कर्म ना हो। फिर क्रोध के वश भी यही कि अगर बाबा का नाम बदनाम हुआ, अगर हमारे द्वारा, जिसको बाबा कहते हैं सद्गुरु का निंदक ठो न पाए, तो ज्यादा बदनामी कराने वाला कौन सा विकार है, क्रोध। अगर हम क्रोध करते हैं और लोग हमें नोट करते हैं इस बात को, माना उससे किसी आत्मा की डिससर्विस हो जाती है, वो बाबा के समीप आने से रह जाती है, तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि हमने बाबा की निंदा कराई कि हाँ ये तो ये ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हैं फिर भी देखो हाँ ये ऐसा करते हैं। तो अगर बाबा की निंदा होती है, डिससर्विस होती है किसी भी रूप से, तो भी हमारा खाता माइनस होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जिसका जमा का खाता अच्छा होगा, बाबा कहते हैं उसकी सूरत ही जो होती है वो ईश्वरीय नशे वाली होगी, यानी सूरत ही सर्विसेबल होगी। जैसे दुनिया में भी जो संपन्न घरानों के लोग होते हैं उनकी सूरत से पता चलता है कि ये अच्छे खाते पीते घर के लोग हैं, मतलब हम समझ सकते हैं कोई एकदम गरीब है और कोई अच्छे संपन्न घराने का है, तो उनके चेहरा ही वो झलक फलक वाला होता है कि इनको प्राप्तियां हैं, माना इस दुनिया में जिस जो भाग्य माने जाते हैं वो इनको प्राप्त है। तो ऐसे ही बाबा के बच्चे जो जमा के खाता जिनका भरपूर होगा, एक तो उनकी स्थिति सदा अचल अडोल होगी, क्योंकि जो भरा हुआ बर्तन होता है वो ज्यादा नहीं हिलता है, इसको कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए कहावत है ना, जो आधा भरा हुआ होता है वो ज्यादा हिलता है और जो भरपूर होता है वो इतना नहीं हिलता है। तो जो भरपूर आत्माएं हैं जिनका जमा का खाता पूरा है वो ज्यादा हलचल में नहीं आती हैं, उनकी स्थिति एक रस होती है, अचल अडोल होती है। और दूसरा कि वो अपनी सूरत से यानी चेहरे और चलन से सेवा करने वाले होते हैं, उनके चेहरे से ही वो दिखाई देता है, वो ईश्वरीय नशा सब आत्माओं को महसूस होता है, वो रूहानियत सबको महसूस होती है, वो अलौकिकता यानी जो बाबा की प्राप्तियां हैं हमें, वो प्राप्तियां अन्य आत्माओं को महसूस होती हैं और इस तरह से सेवा होती है। फिर बाबा ने ये भी कहा उस दिन मुरली में, तीन प्रकार के बच्चे हैं, एक होते हैं जो जमा करते हैं और खाते हैं, माना इकट्ठा नहीं हो पाता है, जमा भी करते हैं और साथ में खत्म भी कर लेते हैं। मानो जैसे अपने अमृत वेला किया, बहुत पावरफुल अमृत वेला किया, बहुत अच्छा हुआ आपका जमा हुआ, लेकिन सारे दिन में जब कर्म व्यवहार में आए तो चार बार गुस्सा भी कर लिया, तो क्या हुआ, जो अमृत वेला जमा किया वो चार बार जो गुस्सा किया वो प्लस माइनस क्या हो गया, कमाया और खाया, तो जमा नहीं कर पाते हैं। ये अटेंशन देने की बात है, माना हमारा जमा का खाता कैसे बनेगा। फिर दूसरे प्रकार के बाबा ने कहा कमाते हैं और बढ़ाते भी हैं, तो हमें क्या बनना है, सिर्फ कमाना ही नहीं है लेकिन कमाने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा वो हमारा बढ़ता जाए। और दूसरे हैं बढ़ाने के साथ साथ औरों के प्रति भी, माना इतना है उनके पास कि औरों को भी सहज, क्योंकि जो संपन्न होगा वही दान कर सकता है, जो गरीब है वो कैसे दान करेगा, जिसका खुद का ही खाता खाली है वो दूसरे को कैसे देगा, है ना, खुद ही शांत नहीं है तो दूसरों को शांति दे सकते हैं क्या, है ना। तो अगर मेरे पास है तो फिर वो सहज दूसरों को भी देते रहते हैं और जितना देते हैं उतना ही वो पदम गुना बढ़ता जाता है। तो ये था कि इन विधियों को हम जितना यूज करेंगे उतना हम बाबा से जो हमें प्राप्तियां हो रही हैं उनसे स्वयं को भरपूर करते हुए अभी ही नहीं लेकिन भविष्य में भी उतने ही संपन्न और भाग्यवान बनेंगे। ओम शांति।